نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. कल का लेक्चर सुन के उम्मीद है कि आपके दिल में सच्ची तौबा करने का ख्याल आया होगा और आपने ज़रूर कोशिश की होगी कि रात में उठ के अल्लाह ताला के आगे मनाजात करें, उसके आगे आंसू बहाएं, अपने गुनाहों को याद करें। बाज़ दफ़ा इंसान गुनाह करता है मगर लोगों के सामने नहीं करता, लोगों से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। घर में करता है या छुप के करता है, तन्हाई में करता है या उन लोगों के सामने करता है जिनके सामने वो बहुत कंफर्टेबल होता है। क्योंकि घर वाले ऐसे होते हैं कि उसको ये होता है कि इनके आगे मैं कुछ भी करूं, तो वहाँ पे इंसान ज़ुबान भी चलाता है, वहाँ पे इंसान ख्यालात का इजहार भी करता है, वहाँ पे इंसान वो एक्टिविटीज़ करता है जो बाहर लोगों के सामने शायद कभी ना करे। तो लोगों में तो वो अच्छा ही समझा जाता है, अगर उसकी असलियत अल्लाह ही को पता होती है। हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन तहामा पहाड़ों के बराबर नेकियाँ लेके आएंगे, यानी उनकी इतनी नेकियाँ होंगी, इतनी नेकियाँ होंगी पहाड़ों के बराबर होंगी जो चमक रही होंगी, लेकिन अल्लाह ताला उनको रेत के बिखरे हुए ज़र्रात की तरह कर देगा। तो सहाबिया रसूल पूछते हैं, या रसूलल्लाह हमें उनके बारे में बताइए, कहीं हम लाइल्मी में इन जैसे ना हो जाएं कि इतनी नेकियां लेकर आए और वो क्या हो गई, रेत के बिखरे हुए ज़र्रात। तो आपने फरमाया, वो तुम्हारे ही भाई हैं और तुम जैसे हैं, यानी देखने में नेकी में वो बहुत इसी तरह आगे हैं, रात को भी वही इबादत करते हैं जो तुम करते हो, लेकिन ये ऐसे लोग हैं कि जब अलहदा होते हैं तो अल्लाह ताला की हुरमात का इर्तकाब करते हैं, यानी जो चीज़ें अल्लाह ने हराम की हुई हैं उनको करते हैं। हम क्या वॉच करते हैं, क्या देखते हैं फ़ोन पे, इंटरनेट पे, क्या बोलते हैं, किधर किधर क्या हरकतें होती हैं, लोगों को तो नहीं पता चलता, अगर अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर नज़र रखे हुए। तो तौबा करनी है इन सभी चीज़ों पे, जो तन्हाई के भी गुनाह हैं और जो मजमे में किए हैं वो गुनाह, और जल्दी करनी है। आज अल्लाह इंतज़ार कर रहा है ना कि बंदा तौबा कर ले, अगर इंसान देर करता जाता है ना तो हमेशा अल्लाह ताला इंतज़ार नहीं करता। फिर वो वक्त भी आ जाता है कि बंदा चाहता है कि वो अल्लाह को मना ले मगर अल्लाह ताला नहीं मानता, वो चाहता है फिर कि अल्लाह की तरफ पलट आए मगर वो कबूल करने को तैयार नहीं होता। तो अगर कोई ये समझता है कि मैं उस वक्त तौबा करूंगी, मैं उस वक्त अपनी आप को सही करूंगी, मैं उस वक्त अपनी इस्लाह करूंगी, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि हमेशा तौबा के दरवाज़े खुले ही रहेंगे, एक दिन आएगा कि बंद हो जाएंगे। और आजकल के हालात में तो हमें बहुत ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की वायरस और मसाइल में हम आज घिरे हुए हैं, पहले कभी ऐसा नहीं था और ना ही कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, नहीं है अल्लाह के अज़ाब दे उनको, वहुम यस्तग़फ़िरून, जबकि वो इस्तगफार करने वाले हों, वो इस्तगफार करते हों तो अल्लाह ताला उनको अजाब नहीं देगा। यानी इसका मतलब है कि अजाब को टालने का तरीका ये है कि लोग इस्तगफार करते रहें। उनसे गुनाह होते होंगे मगर वो तौबा करना ना छोड़ें, वो अल्लाह की तरफ पलटना ना छोड़ें, वो रुजू करना ना छोड़ें, वो बेपरवाह ना हो जाएं। तो इस अजाब से निकलने के लिए बहुत सी चीज़ें लोग बताते हैं, बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कुरान हमें बताता है वो इस्तिग़फ़ार है। अगर इसी को हम भूल गए और बाकी जोर सब चीज़ों पे भी लगा दिया, तो चाहे वायरस है चाहे कोई भी बीमारी है, वो तो अल्लाह के हाथ में है ना, जब चाहे उसको उठा दे, जब चाहे उसको भेज दे। ऐसे वक्त में अक्सर हमारा हाल ये है कि हम दुनिया में इतने मगन हैं ना कि हमें ये होश ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे हालात क्या हैं। वो एक हिकायत है ना कि एक आदमी ने ख्वाब देखा था, ख्वाब में देखता है कि शेर उसका पीछा कर रहा है और वो शेर से भागता है भागता है, और उसको एक दरख्त नजर आता है, उस पर जल्दी से चढ़ जाता है, शेर नीचे खड़ा हो जाता है, ये आदमी एक टहनी पे जाके बैठ जाता है। जरा देर में उसकी नजर पड़ती है दो चूहों पे, एक काला और एक सफेद है, और वो उसी टहनी को खा रहे हैं जिस पे वो बैठा हुआ है। अब किसी भी वक्त वो टहनी टूटने वाली है, और नीचे देखता है तो एक बड़ा सा सांप मुंह खोले बैठा हुआ। अब देख लेना मसला ही मसला, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट्स अ मैटर ऑफ वेन, कि कब वो गिर जाएगा। ये नहीं कि अगर वो गिर गया तो, नहीं कि बस किस वक्त वो वक्त आना है कि वो गिरा और इस सांप के मुंह में चला गया। मगर इतनी देर में उसको ऊपर नजर आता है एक शहद की मक्खी का छत्ता जिससे शहद टपक रहा है, और वो टपक रहा है और उसने वो शहद चखा, उसको इतना मजा आया उसमें कि वो उसको ही पीने लगा, और वो भूल ही गया कि दो चूहे मुसलसल टहनी को काट रहे हैं। ये हाल है इंसान का, इंसान की जिंदगी को ये दो चूहे, काला और सफेद क्या है, दिन और रात, ये मुसलसल उसकी जिंदगी को खत्म कर रहे हैं। शेर जो है मौत है जो उसके पीछे लगा हुआ है, और वो सांप उसकी कब्र है जिसमें उसको जाके पड़ना है, वो अंधेर कोठड़ी है। फिर भी इंसान का हाल देखें, वो दुनिया का शहद चखने में इतना खो चुका है कि उसको याद ही नहीं कि उसके सर पे क्या मसले खड़े हुए हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दुनिया की मिठास आखरत की कड़वाहट है। समझ आई बात, जो इसमें गुम हो गया ना, जो यहीं के मज़े, यहीं फन, यहीं ये, हमने तो यही जिंदगी बनाई हुई ना, बस यही है जिंदगी, खाओ पियो मज़ा करो, बस मज़ा करने के लिए हम आए हैं शायद दुनिया में। और मज़ा अगर बंद हो जाए तो हमें हौल उठने लगते हैं कि हमें मज़े नहीं आ रहे, बोरियत हो रही है। दुनिया की मिठास आखरत की कड़वाहट है, और दुनिया की कड़वाहट आखरत की मिठास है। यहाँ पे कोई अपनी नींद कुर्बान करता है, आराम कुर्बान करता है, अपनी जॉब कुर्बान करता है, अपने और औकात जिसमें वो सैर सपाटे कर सकता है, मज़े मज़े खाने खा सकता है, वो इनकी कुर्बानी देता है। ये दुनिया की कड़वाहट ही है, यहाँ पे बच बच के चलता है, वो चीज़ें जिसमें लोग मज़े कर रहे हैं वो उनसे अपने आप को बचा के रखता है, तो ये फिर आखरत की मिठास बनेगी। और जो यहाँ पे मनमानी जिंदगी गुजार रहा है ना, मादर पिदर आजाद, कि जैसे कभी लौटना ही नहीं, जिसको भूल गया है ना लौटना, तो ये फिर आखरत की कड़वाहट है, ये आखरत की कड़वाहट बन के रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे भी मीठा मीठा और वहां पे भी मीठा मीठा, ये नहीं होना, ये याद रखिए। यहाँ पे कुछ मुशक्कत उठाएंगे तो वहां पे उसका समर खाएंगे, यहाँ पे जिसने आराम ही किए हैं ना तो फिर वहां पे मुशक्कत है। एक और हदीस में आता है ना, अल्लाह ताला दो अमन और दो खौफ जमा नहीं करता, दो अमन मतलब क्या, यहां पे भी अमन में है वहां पे भी जाके अमन में, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो यहां पे अपने आप को बिल्कुल छोड़ के बैठा रहा हो उसको वहां पे खौफ आएगा, और अल्लाह दो खौफ भी नहीं जमा करता। ये भी नहीं होगा कि यहां पे खौफ है तो वहां पे भी जाके उसके लिए खौफ है, नहीं, जो यहां पे अल्लाह से डर डर के चला वहां अल्लाह उसको बेखौफ कर देगा। इन्ना अउलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम है। ठीक है, तो इस जिंदगी में मेहनत करनी है। आप लोग थक तो नहीं गए इतने दिनों में? बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया आपके लिए? आप कभी कुरान पढ़ रहे हैं, कभी तकबीरात पढ़ रहे हैं, कभी रात को उठ के तहज्जुद में बैठे हैं, कभी रोजा रख रहे हैं, थके तो नहीं इससे? देखें, जिब्राईल अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के पास आए और फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी प्यारी हदीस है ना, बहुत मुझे पसंद आती है, आप भी इसको पल्ले बांध लें। फरमाया, जितना चाहो जिंदा रहो, बिल आखिर तो मर जाना है। कितना इंसान जिंदा रह लेगा, कितना इंसान जी लेगा इस दुनिया के अंदर, बिल आखिर मर जाना है। जिसको चाहो महबूब बना लो, बिल आखिर तो जुदा होना। कई मोहब्बतें ऐसी हैं कि उन मोहब्बतों के पीछे इंसान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, उन मोहब्बतों में इतना इन्वॉल्व होता है कि उनकी वजह से इंसान अल्लाह ताला की इबादत भी सही से नहीं कर पाता। और फरमाया, जैसे चाहे अमल कर लो, बिल आखिर उसका बदला तो मिलना ही है। बुरे करोगे तब भी मिलेगा, अच्छे करोगे तब भी मिलेगा। आगे हदीस है, और जान लो मोमिन का शर्फ कयामुल लैल में, और इस उसकी इज्जत लोगों से बेपरवाह हो जाने में, यानी लोगों से कोई लालच नहीं, लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, लोगों से बेनियाज। और मोमिन की इज्जत किस में? कयामुल लैल में। तो बड़ी प्यारी हदीस है, देखें, जैसा चाहें अमल कर लें, बिल आखिर बदला मिलना। तो जो आप अपने आप को थकाएंगे, हलकान करेंगे, मेहनत करेंगे, मुशक्कत उठाएंगे, कभी ना सोचिएगा हाय मैं इतनी थक रही हूँ, देखो लोग इतना मज़ा कर रहे हैं, फलाना तो कुछ नहीं कर रहा और मुझे ही बस है। नहीं, इसका बदला मिलके रहेगा। आज सामने नज़र नहीं आ रहा, ये ना समझिएगा कि मिलेगा नहीं, अल्लाह ताला के पास एक एक चीज़ महफूज है। आपको भूल गया होगा आपने कितनी तकबीरात पढ़ी कल, नहीं याद ना किसी को भी, अल्लाह ताला के हाँ मगर एक एक का रिकॉर्ड लिखा हुआ। आपको भूल जाएगा कि इस रमज़ान में मैंने क्या क्या जिक्र करी, क्या क्या दुआएं की, अगर अल्लाह के यहाँ सब लिखा हुआ, एक एक बात लिखी हुई है, वो भूलता नहीं, वो चूकता नहीं। अब ये देखें, ये अशरा ख़त्म होने वाला है, तकरीबन एंड आ गया है, चंद दिन बाकी हैं, मगर अक्सर लोग 9 तारीख को ही भूल जाएंगे कि ये अशरा चल रहा था। 9 तारीख पे ही जो सबसे अहम दिन है, उस दिन बस खाने पकाने में ख्वातीन ऐसी बिजी हो जाती, याद ही नहीं रहता कि ये कीमती दिन चल रहा है। यहाँ ब्यूटी पार्लरों पर रश लग जाता है, ना कोई तकबीरात याद रहती हैं, ना कुरान पढ़ना याद रहता है, ना तौबा इस्तग़फ़ार करना याद रहता है, ना कोई नेक अमल करना याद रहता। नमाज भी टाइम पे हो जाए तो ईद वाले दिन तो वो भी बड़ी बात लगती है। ईद वाला दिन क्या अशरा जिलहज्जा में इंक्लूडेड है कि बाहर है? अशरा किसको कहते हैं? 10। तो ईद किस दिन है? 10 जिलहज्जा को। तो ईद का दिन इसमें शामिल हुआ कि नहीं? फिर ऐसा क्यों होता है कि ईदें देख लें? हम लोग ऐसा समझते हैं कि जैसे ईद मींस अब हम आज़ाद हैं, जो मर्जी करें, ऐसा पार्टी टाइम जिसमें अल्लाह का कोई जिक्र नहीं, कोई तकबीरात नहीं, ईद की ऐसी मेहमान नवाजी कि उसमें ही सारा दिन थकते रहते हैं। फिर मिक्स गैदरिंग्स, जर्क बर्क लिबास पहन के गैर महरमों की गैदरिंग में घूमते रहना, सब भूल जाता है किस चीज़ पे तौबा की थी, किस पे रोए थे, अल्लाह से माफियां मांगी थी, याद ही नहीं रहता कि कुछ किया भी था या नहीं। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, कभी अल्लाह को याद किया था पता ही नहीं। अगले रमजान तक फिर गुम हो गए, सब भूल जाते हैं। इस दफा ऐसा नहीं करना, जो अपनी इबादत है उनको जाया नहीं करना। ये बातें ईद के दिन भी याद रखनी है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना, भुला नहीं देना कि क्या सीखा। खुशी आप जरूर करें, जरूर मनाएं, अल्लाह ताला ने तो ये खुशी का दिन दिया है, मगर उसमें अल्लाह को नाराज करके अपनी खुशी ना करें। अल्लाह को नाराज करके जो खुशी करेगा, बताएं क्या हासिल होगा उसको। अल्लाह को नहीं बस नाराज करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तकबीरात पढ़ना नहीं भूलनी। देखें तकबीरात दो तरह की हैं, एक तकबीरात तो मुतलक है ना, जो फर्स्ट ज़िलहज्जा का चांद नजर आ जाए तब से शुरू होती हैं, और अय्यामे तशरीक यानी 11, 12, 13 के एंड तक, वो तो हर वक्त ही पढ़नी, चाहे आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, किसी जॉब पर हैं, किसी बिजनेस कोई करते हैं आप, वहां पे हैं, दुकान पे हैं, आप बाजार में हैं, आप किसी के घर गए हुए हैं, आप किसी को विजिट कर रहे हैं, तकबीरात वो हर वक्त ही पढ़नी है। उसका कोई टाइम नहीं है कि आपने बस फर्स्ट से लेके 13th के एंड तक आपने वो पढ़नी है। दूसरी तकबीरात जिनको मुकय्यद कहते हैं, उनका वक्त स्पेशली शुरू होता है ईद से एक दिन पहले, यानी 9th ज़िलहज्जा की फजर से शुरू होता है। 9 तारीख आएगी, उसकी फजर से शुरू होगा, और अय्यामे तशरीक यानी ज़िलहज्जा की 13th जो 13 तारीख है उसकी असर के बाद तक। इसमें कौन सी तकबीरात पढ़नी है? ये खास तौर पे आपने फर्ज नमाजों के फौरन बाद तकबीरात पढ़नी, यानी फर्ज नमाज से सलाम फेर के तकबीर पढ़ें, फिर 3 मरतबा इस्तगफार करें। जैसे हम अभी तो सलाम फेरते हैं तो कहते हैं अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला अस्तगफिरुल्ला, तो आपने पहले तकबीर पढ़नी है, फिर इस्तगफार पढ़नी है, फिर अल्लाहुम अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक तैया जल जलाली वल इकराम, ये पढ़ के फिर तकबीरात पढ़ें। ठीक है, तो ये नमाज की बात है, फर्ज नमाज के बाद। हर नमाज के बाद आपने इस तरह से तकबीरात अदा करनी है, और इसका एंड कब होगा? 13 ज़िलहज्जा की जो असर की नमाज है, जाहिर है वो आखिरी नमाज होगी अय्यामे तशरीक की। उसके बाद तो जो मगरिब होती है, तो आपको पता है ना, दूसरा दिन शुरू हो जाता है। तो इसमें आपने ये तकबीरात पढ़नी है। ठीक है, फिर यौम अरफा का रोजा। अब ये झगड़ा नहीं खत्म होता, जी योम अरफा का रोजा रखना है कि जिलहज्जा का? हमारे पास तो जिलहज्जा 9 जिलहज्जा डिफरेंट है, योम अरफा डिफरेंट, तो क्या वो फर्क पड़ जाता है? एक दिन एक्स्ट्रा रोजा रख लोगे तो कोई मसला है? और हर तरफ देखेंगे ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है, एक दिन का रोजा रखना भी हमारे लिए और मुश्किल है कि भाई दोनों रख लो, आप अरफा के दिन का भी रख लो, आप 9 जिलहज्जा का भी रख लो, क्योंकि जिस आलिम को देखें वो अपनी बता रहा है उसमें राय। कोई कहता है अरफा का रखना है वो जरूरी है, उसको हमने देख के चलना है, कोई कहता है नहीं आप अपने इलाके में देख लें 9 जिलहज्जा कब है उसका आपने रखना है। मैं तो कहती हूँ दोनों दिन का रखने में क्या प्रॉब्लम है, कोई मसला है इसमें? वैसे ही सारे इन दिनों में रखना चाहिए। चलो अगर नहीं रखे गए तो कम से कम इन 2 दिनों का रख लें आप, वैसे ही इतने फजीलत वाले दिन है, वैसे ही अल्लाह के महबूब दिन है, जा रहे हैं बिल्कुल। 10 का तो आप वैसे ही नहीं रख सकते, 11, 12, 13 को भी नहीं आप रख सकते, तो ये तो अशरा तो खत्म होने लगा, एंड के चलो 2 रख लें आप, तो इससे हमें मिलेगा क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौमे आरफा के रोजे के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया पिछले साल के और आइंदा आने वाला साल के गुनाह अल्लाह ताला दूर फरमा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रोजा रखते थे इस दिन, और सिर्फ हाजी जो हज पे होगा वो ये रोजा नहीं रखेगा, बाकी सब रखें। देखिए ना लैलतुल कदर के लिए हम कितना तड़पते हैं, हम कहते हैं हाय काश हमें पता हो कि वो कौन सी रात है तो हम उसमें इबादत कर लेते, अब पता नहीं है तो फिर बड़ी हम उसके अंदर रहते हैं हमेशा हर साल के, हाय काश हमें पता होता। तो चलो उसका तो नहीं पता, इनका तो पता है ना, जिनका पता है उनके ऊपर भी अगर हम तवज्जो ना करें और इसी झगड़े में पड़े रहें कि हम अरफा के दिन का रखें कि नौ जिलहजा का रखें, भाई आप दोनों दिन का रखें और अल्हम्दुलिल्लाह करें, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। चलो एक बहाने से एक्स्ट्रा रखा गया, वरना कहाँ हम रखते हैं। तो जब दिन पता चल गया फिर सुस्ती करना, एक चीज का तो पता नहीं है कि कब वो रात है, उसके लिए इतनी बातें, और अब जब पता है तो फिर कोई परवाह ना होना, तो ये सही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला रोजा भी रखेंगे और फजर के बाद से तकबीरात भी शुरू कर देंगे। तकबीरात के आपको पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया कि तहलील का बहुत ज्यादा अल्लाह की बयान करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीह बहुत ज्यादा बयान करो यानी सुभान अल्लाह, तहमीद बहुत बयान करो यानी अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर बहुत बयान करो। तकबीरात के कोई खास लफ्ज नहीं आपने बताया कि सिर्फ ये वाली तकबीरात करनी, इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तकबीरात के अल्फाज भी मिलेंगे, क्योंकि सल्फ सालेहीन ने बहुत से सीगों से तस्बीह ये तकबीरात बयान की हैं, तो आपको जो आसान लगती है इसलिए हमने सबसे आसान वाली ये आपके साथ शेयर भी की है। तो सबके एक ही बात है, तकबीरात ही है ना, तो हमने बस वो पढ़ते रहना। तो इंशाअल्लाह ताला इन दिनों में इसका एहतमाम और ज़्यादा करना। देखें जो ये सुन्नत है ना, ये बिल्कुल आजकल ख़त्म हो गई, ये लोग इसको भूल चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वक्त में ये होता था कि हज़रत उमर अपने खैमे में तकबीरात पढ़ते थे और जो लोग सुनते थे वो भी तकबीरात कहते थे, बाजार वाले भी तकबीरात कहते थे। इसी तरह पता चलता है हज़रत अबू हुरैरा वो तकबीरात कहते हुए बाजार में निकल जाते थे, फिर उनकी तकबीरात ऊंची ऊंची कह रहे थे ना, तो सुन के बाजार वाले भी तकबीरें पढ़ते थे, और जब बाजार वाले भी पढ़ते थे तो फिर सारा बाजार गूंज जाता था। और जो मैं आपको दूसरी बता रही हूँ हज़रत उमर के पढ़ने की, तो वो मीना में जब अपने खैमे में पढ़ते थे ना, तो पूरा मीना, जाहिर है सारे लोग साथ शामिल हो गए, तो पूरा मीना तकबीरात से गूंज जाता था। आज तो ऐसा कुछ माहौल ही नहीं आप देखते, अपने घरों में नहीं हम देखते, ना किसी जगह पे भी, हम भूल गए हुए हैं कि तकबीरात भी पढ़नी है। तो याद रखिए, जो किसी सुन्नत को जिंदा करता है ना, ये सुन्नत है जो खत्म हो चुकी है, जो जिंदा करेगा तो जितने लोग उसके बाद वही काम करते रहें, ये उन सब का अजर इस बंदे को मिलता रहेगा। तो सुन्नतों को जिंदा करने का शौक रखें कि ये एक सुन्नत मेरे नबी की खत्म हो रही है, मैं इसको जिंदा करने वाली बनूं, इसका इसका एहतमाम करें। आज का जो जिक्र है ना, वो जब मैं आपको बताऊंगी इसके फजाइल आप सुनेंगे, तो मुझे तो लगता है कि आप सारे ही जिक्र छोड़ के आप कहेंगी बस मैं यही करती रहूं, इतना जबरदस्त है। पहले मैं आपको उसके फजाइल बता देती हूँ ताकि आपको फिर पता चले कि मैं कितनी कीमती बात आपको बताने वाली, कितना कीमती ये जिक्र है। ये जिक्र जब भी आप करेंगे तो इसके हर कलमे के बदले में आपको सदका करने का अजर मिलेगा, ये सदके के तौर पे आमालनामे में लिखा जाएगा, यानी ये समझ लें कि आपने सदका कर दिया। फिर इस जिक्र को आप जब करेंगे 100 मरतबा तो 1,000 निकियां लिखी जाएंगी और 1,000 गुना आपके माफ होंगे। फिर इस जिक्र की फजीलत ये है कि मीज़ान में, पूरा मीज़ान जो है ना, मीज़ान के बारे में आता है कि आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा बड़ा है मीज़ान, वो सारा नेकियों से भर जाता है। जब आप ये जिक्र करते हैं 100 दफ़ा सारा भर जाएगा, सोचें कितना, ज़मीन और आसमान से भी बड़ा मीज़ान भर जाए तो कितनी जगह है। फिर सिर्फ मीज़ान ही नहीं, ज़मीन और आसमान के दरमियान का खला जितना है ना, जितनी ये स्पेस है, ये सारी नेकियों से भर जाएगी। और ये कलिमात पढ़ने से उस शख्स के लिए जो तहज्जुद में जिसको सुस्ती आती है या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में उसको बुखल महसूस होता है, उसकी भी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से अपने हथियार पकड़ लो। उन्होंने कहा, या रसूल्ला, क्या कोई दुश्मन आ गया? आपने फरमाया, नहीं, आग से अपना बचाव करो। अभी किसको कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसको कह रहे हैं बताएं? सहाबा को ना, जिनसे बेहतरीन और कोई नहीं है। बाद अंबिया सहाबा कराम की जमात सबसे बेहतरीन है, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? हैरत नहीं हो रही आपको कि आग से अपना बचाव करो? उनको आग से क्या खतरा हो सकता है? हम तो खुद अपने आप को आग से नहीं समझते कि हमें कोई खतरा है। हम तो खुद अपने आप को बख्शे बख्शाए समझते हैं, तो हमसे बहुत आगे थे। लेकिन अगर उनको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं, तो उसके बाद हमें अपने लिए सोचें कि क्या सोचना चाहिए, कि हमें अपने बचाव के लिए कितनी फिक्र होनी चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कलिमात बताए कि क़यामत के दिन ये बचाने के लिए आने वाले हैं, ये क़यामत के दिन बचाएंगे, पीछे से आएंगे। और ये कलिमात बाकियात सालेहात हैं, बाकी रहने वाली नेकियां। और फिर इनको कहने से 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब मिलता है। आज एक ऊंट में भी हिस्से हैं तो हम एक हिस्सा अफोर्ड कर पाते हैं। और कहां एक ऊंट नहीं, एक पूरा ऊंट नहीं, 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का सवाब। फिर औलादे इस्माइल के 100 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। और फिर भी अगर हम सुस्ती करें, सोचें, इतनी बातें सुन के, और कलिमात बहुत आसान है, बहुत आसान है, और सबको आते भी हैं। और कलिमात क्या है? 100 दफा सुबहान अल्लाह, 100 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 दफा अल्लाहु अकबर, 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। चाहे आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह दें, चाहे आप 100 100 दफा अलग अलग पढ़ लें, इतना कुछ आपको मिलेगा। आप बताएं, आप फोन पे इतनी बातें करते हैं, घंटा तो लग ही जाता है, ऐसे ही देखते हैं तो 30 मिनट 40 मिनट, कितना सवाब मिलता है उसका? और ये कलिमात कहने का कितना सवाब है? आप टीवी देखते हैं, उसका कितना सवाब है? और आप फेसबुक देखते हैं, उसका कितना सवाब है? उसमें कितनी देर लग जाती है, कल लगती है ना? और इनको कहने में कितनी जुबान थक जाती है, कितनी थकती है बताएं? कुछ नहीं थकावट होती। फिर भी बस देखिए ना, आजकल हमें इन चीज़ों की वैल्यू नहीं है। इसलिए नहीं वैल्यू है कि परवाह ही नहीं है हमें, इतना अच्छा, ये इतना मिल रहा है, कोई मसला नहीं है। आज नहीं है इसकी परवाह, मगर जब आखिरत के बाजार में जाओगे ना, तो ये इतनी कीमती नजर आएंगे कि उस वक्त दिल करेगा, हाय मैं कितनी बदबख्त थी कि मैं दुनिया के अंदर, मुझे इतना टाइम मिला, इतने साल मिले, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, और मैं चुप करके बैठी रहती थी। कितनी जगह मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मैं डॉक्टर ऑफिस में बैठी हुई हूँ, मैं एयरपोर्टों पे बैठी हुई हूँ, मैं घर में ऐसे ही बैठी हुई हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं बर्तन धो रही, बस जुबान को सिया बस, या फोन पे बातें। उस वक्त कोई कोई याद नहीं आपको करने को कह रहा, कुछ भी नहीं याद करना इसमें, तो ये सबको आते हैं, आप सब ये कलिमात जानते हैं, हर मुसलमान उसको याद है, फिर भी बेपरवाही है। यहाँ तो कुछ चीजें होती ना, हमें याद नहीं होती, हम कहते हैं अच्छा अब कौन याद करे, इनको तो याद करना भी नहीं है, फिर भी कितनी हमारी काहली, हमारी बेतवज्जोही, हमारी गफलत है। असल में वैल्यू नहीं है, जिस चीज की वैल्यू हो इंसान फिर उल्टा लटक के भी उसको पूरा करता है, वैल्यू नहीं है ना। वक्त गुजरता जा रहा है, 1 मिनट में आप कितनी दफा कह सकते हैं, लेकिन वक्त गुजरता जा रहा है, हमें परवाह ही नहीं। तो आज नहीं है ना परवाह, क्योंकि आज इसकी वैल्यू नजर नहीं आ रही, कल इसकी वैल्यू नजर आएगी तो इंसान फिर कितना पछताएगा। ऐसे ही नहीं है कयामत यौमुल हसरा, हसरत का दिन, क्या इन चीजों पे हसरत नहीं होगी? क्या इन घंटों, इन मिनटों, इन सेकंडों पे हसरत नहीं होगी कि कितना आसान कलमा था? मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, बैठी हूँ, खड़ी हूँ, ना कोई वुजू करना है, ना कोई मुझे पाकी ना पाकी का कुछ देखना है, ना मुझे कुछ भी नहीं, अब मुझे ये कोई देखना है कि भाई मैं घर में हूं या बाहर हूं। इतना आसान काम भी ना मैं कर सकी। कभी इमेजिन करें अपने आप को वहां खड़ा करके और सोचें कि उस वक्त कैसा लगेगा फिर, और कितना गुस्सा आएगा अपने आप पे। तो आज अभी वक्त है, आज अभी मौका है, कर लें जितना जिक्र कर सकते हैं कर लें, और इन कलिमात को तो अपने जुबान पे एक हिस्सा बना लें। और सबसे प्यारी इन सारी बातों में जो सबसे प्यारी मुझे हदीस लगती ना, मैं आपको वो वाली बताऊंगी इस बारे में कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा सुन के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की अजमत का जो जिक्र करते हो ना, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलिमात अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द चक्कर लगाते हैं। सुभान अल्लाह, जब हम यहाँ से बोलते हैं ना, अल्लाह अकबर, ला इलाहा, सुभान अल्लाह, ये बोलते हैं ना, तो ये कलिमात यहाँ थोड़ी रहते हैं, ये चले जाते हैं आसमानों से ऊपर, वहां तक इनकी परवाज है जहां हम नहीं पहुंच सकते। ये अल्लाह के अर्श के गिर्द घूमते हैं, उसका तवाफ करते हैं, और उनकी यही भिनभिनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट। और वो अपने कहने वाले का अल्लाह के हाँ जिक्र करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के हाँ तुम्हारा जिक्र होता रहे? अल्लाह, हम क्यों नहीं चाहते? हम तो नहीं वहां तक पहुंच सकते। अल्लाह हमारी रूहों को ये सआदत नसीब करे, जो नेक रूहें होंगी उनको ये सआदत मिलेगी, वो उनके लिए आसमानों के दरवाजे खुलेंगे, बद रूहों के लिए तो खुलेंगे भी नहीं। अल्लाह हमारी रूहों को भी ये सआदत नसीब करे कि वो अल्लाह के अर्श के आगे जाके सजदा करें, और अल्लाह ताला हमसे ये कलिमात अदा करवाए कि हमारे ये कलिमात जाके मेरा आपका नाम वहां पे लिया जाए कि ये फलां की तरफ से आए हैं। ऐसे वो भिन भिन करते हैं ये कलिमात। क्या तुम नहीं चाहते अल्लाह के हाँ तुम्हारा जिक्र होता रहे? सुभान अल्लाह, क्यों नहीं? तो जो जितना चाहता है कि मेरा जिक्र अल्लाह के हाँ होता रहे, वो उतने ही ज्यादा ये कलिमात कहे। ये मुझे बहुत प्यारी एक बात इसके अंदर लगती है। तो उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इन दिनों में बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करेंगे। इसी तरह एक और आसान सी नेकी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी। जब भी आप बाथरूम जाएं, वुजू कर लिया करें। हाँ, ये अलग नेकी, चाहे आपने नमाज नहीं भी पढ़नी, कोई मसला नहीं है, वुजू कर लिया करें। वुजू भी इंसान के गुनाहों को झाड़ने का जरिया, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, आप अपने कुल्ली करते हैं तो मुंह के अंदर के गुनाह झड़ते हैं, आप अपना फेस वॉश करते हैं, आपके चेहरे के ये आज़ा हैं, इनके गुनाह झड़ते हैं, आंखों के, नाक के, मोंटों के, चेहरे के गुनाह झड़ते हैं। आप कानों को मसह करते हैं, कानों के गुनाह झड़ते हैं, आप बाजू धोते हैं, हाथों के गुनाह झड़ रहे हैं, पैरों के गुनाह झड़ रहे हैं। तो गुनाह झाड़ने का कितना अच्छा जरिया है। फिर ये आज़ाद चमकेंगे कयामत के दिन। इनको देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे अपने उम्मतियों को। फिर इतना ही जेवर मिलेगा जहां तक वुजू के निशान होंगे। तो जो चाहे अपनी चमक ज्यादा बढ़ा ले, ज्यादा से ज्यादा वुजू किया करें, और बिस्मिल्लाह कह के वुजू शुरू कीजिए, और आखिर में मैंने आपको कल भी बताया था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, ये पढ़ लेंगे तो आठों जन्नत के दरवाजे ऐसे शख्स के लिए खुल जाएंगे कयामत के दिन, जिस चाहे दरवाजे से एंटर हो जाए। सुभान अल्लाह। तो इसको तो हम मामूली सी चीज़ समझते हैं ना, मामूली समझते हैं ना, वुजू क्या चीज़ है, बाथरूम जाते भी हैं, हाथ धो के निकल आते हैं, हर दफा वुजू करके क्यों ना निकले, गए ही हुए हैं तो वुजू ही कर ले। तो आसान नेकी, आसान, वुजू के अंदर आप रहें, वैसे पाकीज़गी और तहारत में रहेंगे, और आपको पता है कि जो पाकीज़ा लोग होते हैं अल्लाह ताला को उनसे मोहब्बत है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह को तौबा करने वालों से बड़ी मोहब्बत है, तो तौबा हम कर रहे हैं आजकल, और अल्लाह ताला को पाक साफ रहने वालों से बड़ी मोहब्बत है, जो पाक रहते हैं, अपने आप को पाक रखते हैं ज़ाहिरी तौर पे, ظاہری پاکی کی بات ہو رہی ہے، توبہ اندرونی پاکی ہے، دل کی صفائی۔ تو اب چونکہ ہمارا کل تو پروگرام نہیں ہونا انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ آپ سے اتنی منڈے کو ملاقات ہونی ہے، تو اس سے پہلے اپنے دلوں کو پاک کر کے آئیے گا۔ یہ ہم نے اپنے لیے توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، لیکن اس سے پہلے کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اس کو معاف کر دیں، اور کسی سے معافی مانگنی ہے، آپ نے کسی سے برا کیا تو اس سے معافی مانگ لیں۔ یہ دو کام کر کے آئیں۔ کیا دو کام کرنے؟ آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اس کو معاف کر دیجئے۔ کیوں کیوں معاف کروں؟ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں کیوں معاف کروں؟ کیا مصیبت ہے مجھے معاف کرنے کی؟ اس لیے معاف کر دوں کیونکہ میں نے بھی اللہ کی جناب میں بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑی بری باتیں کی ہیں، بڑی گستاخیاں کی ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے، تو اس سے پہلے میں کسی کو معاف کر دوں، میں یہ صدقہ کر لوں۔ یہ صدقہ کرنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، دل کو کڑا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب یہ امید ہوتی ہے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی مانگنے سے پہلے آپ معاف کر دیجئے۔ دوسرا، آپ نے کسی سے معافی مانگنی ہے نا، کسی کے ساتھ آپ نے برا کیا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ برائی کی ہوئی ہے، برا معاملہ کیا ہوا ہے، زیادتی ہو گئی آپ سے، اب اس سے معافی مانگ لیں، اس میں شرم نہ کریں۔ یہ دو کام کریں، پھر اسی بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس دن دعا بھی کریں گے، اس دن ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی مانگیں گے۔ وہ بڑا اہم دن ہے، بڑا بہت بڑا دن ہے۔ اور آج کی دعا جو ہے، یہ سورہ آل عمران میں آخر میں آئی ہے، ایسے ہی یہ آخر کی آیتیں جو سورہ آل عمران کی ہیں نا، آخر کی 190 آیت سے لے کے اینڈ تک، یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں، اور ان میں یہ دعا آتی ہے، اور دعا کیا ہے آپ میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بس ہمیں معاف فرما دے، تو ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہوں کو کور کر دے، ڈھانپ دے، وکفر عنا سیئاتنا، اے اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، کیونکہ یہ برائیاں ہمارے ساتھ چمٹ گئی نا، آج ہم توبہ کرتے ہیں پھر وہ ہم سے برائیاں ہو جاتی ہیں، آج ہم معافی مانگتے ہیں پھر ہم سے وہی ہو جاتا ہے، تو اللہ یہ برائیاں ہماری زندگی سے نکل جائیں، ان کو ہم سے دور کر دے۔ دل چاہتا ہے نا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم برا کریں، پھر بھی ہو جاتا ہے، تو اللہ ہمارے سے برائیوں کو دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کرنا، نیک لوگوں کا ساتھ یعنی ہمیں مل جائے۔ تو یہ اتنی پیاری دعا ہے، کیونکہ دیکھیں آپ نے گناہوں کی معافی بھی مانگی، برائیاں آپ سے دور ہو جائیں فیوچر کے لیے وہ بھی مانگ لی، اور نیک صالح لوگوں کا ساتھ بھی مانگ لیا۔ تو اس دعا کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے تھے، آیتوں کو پڑھا کرتے تھے جس وقت کے قبولیت کا وقت ہے، تو ہمیں بھی ان آیات کو پڑھنا چاہیے اور اس دعا کو بھی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں بخشش بھی ہے، اس دعا میں اپنی برائیوں سے نجات بھی ہے، اللہ انہیں ان سے نجات دے دے، اور نیک لوگوں کا ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح صبح اور شام کی دعائیں ضرور پڑھیں، خاص خاص طور پہ آج کل تو ویسے ہی ضرور پڑھنی چاہیے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے محبوب دن ہے، تو ہمیں نہیں پتہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، تو صبح شام کی دعائیں ویسے بھی انسان کے لیے پروٹیکشن ہے، یہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جس کے پاس نہیں ہے وہ وہاں سے جا کے پرنٹ کر لے۔ تو ان سے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے پیچھے دشمن لگا ہوتا ہے، وہ بھاگ کے جا کے ایک مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا ہے، یہ دعائیں ایسی ہیں جیسے وہ قلعہ ہے، और पता नहीं कितने शर हैं जो हमारे पीछे लगे हुए हैं। शैतान तो है ही, और भी कितने तरह के शर हैं। तो हर शर से हिफाजत हो जाती है जब हम इस मजबूत किले में एंटर हो जाते हैं जो ये दुआएं हैं। तो हमारे असलाफ कभी इनको नहीं छोड़ते थे। ये कब पढ़नी होती हैं? फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद। ठीक है कि इनको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो जाए। आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला मंडे को सुबह 7 बजे मुलाकात होती है। 7 बजे रखने का मकसद ये है, ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 7 बजे, आप अपना टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा। मकसद ये है कि वो वक्त बड़ा ही खूबसूरत वक्त, तो आप कोशिश कीजिएगा कि उस दिन सोएं नहीं प्लीज़। वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। रोज़ा रख के आप फजर पढ़िए, फिर उसके बाद आप अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए। ये जो मैंने आपको सुबह शाम की दुआएं बताई हैं ये करें। उसके बाद आपने सोना नहीं, फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला का जिक्र वहीं बैठे हुए करते रहना है। कुरान पढ़ें आप, अल्लाह का जिक्र, नफल नहीं पढ़ सकते, पर ये सब पढ़ें। ठीक है, आप जब आप देखेंगी कि यानी इशराक का वक्त हो गया है, तो उस वक़्त आपने 2 नफल पढ़ लेने। पर इसका फ़ायदा क्या है कि हम हज पे तो नहीं जा सके हैं, इस दफ़ा तो कोई भी नहीं जा सका, तो हज और उम्रे का सवाब हमें मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि हम वहीं बैठे हुए अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें हैं मुसल्ले पे बैठ के, फजर से लेके इशराक तक, यानी जब सूरज बुलंद हो जाए। तो ये तकरीबन तकरीबन 1.25 घंटे का टाइम होता है फजर की अजान के बाद। तो उसके बाद इंशाल्लाह आप प्रोग्राम अटेंड करें। फिर आपने सोना हो तो बाद में थोड़ी देर आँख लगा लें, लेकिन आपको पता है कि ये दिन बड़े कीमती दिन है, तो इनमें जितना आप कोशिश करके साथ आप अल्लाह का जिक्र कर सकें वो बेहतर है। थोड़ा अपनी नींद की कुर्बानी दें। मुझे पता है लोगों को थकावट भी हो रही होगी, नींद कम हुई भी आजकल, लेकिन बस थोड़े से ही तो दिन रह गए। और अगर आप सुबह सोते हैं उसके बाद इशराक के बाद, तो जब भी आप उठते हैं मसलन 10 बजे 11 बजे आप उठे हैं, तो उसके बाद फिर उठ के 2 नफल पढ़ लें, जिसको हम दुहा के नफल कहेंगे या चाश्त जिसको हम कह लेते हैं। तो ये भी सदका हो जाएगा आपकी तरफ से, आपके जोड़ों का सदका। आपके 360 जोड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के अंदर 360 जोड़ हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि वो हर जोड़ का हर दिन सदका करे। क्यों, अल्लाह ने हमें ये नेमतें दी हुई, क्या इनका सदका नहीं करेंगे? ये जॉइंट्स ना होते, आपका हाथ ही कुछ ना कोई चीज़ पकड़ ना सकता, आप चल ना सकते, आप बैंड ना हो सकते। तो मूवमेंट इसलिए कि हमारे पास ये जोड़ हैं, ये जॉइंट्स हैं। और जिनको जॉइंट्स की बीमारी लग जाती है, अर्थराइटस वगैरह ऐसी चीज, उनसे पूछें जाके कि क्या हाल होता है। तो इनका सदका करें, सदका निकालें। तो सहाबा ने कहा कि हम कैसे सदका निकालें इनका, क्यों नहीं इसकी कैसे करें? आपने फरमाया 360 नेकियां करके। अब उन्होंने कहा हम ये कैसे करें 360 नेकियां, हर जोड़ के बदले एक एक नेकी करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, तरीके बता दिए कि आपने कैसे नेकी करनी है। फरमाया किसी के थूक को साफ कर देना मस्जिद में, मसलन मस्जिद में गंदगी गिरी हुई आपने साफ कर दी। रास्ते में फरमाया कि कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हुई उसको हटा दिया, ये सब नेकी है। और ये भी कोई ना कर सके तो फिर ये चाश के 2 रकात पढ़ ले तो उसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। तो आपकी तरफ से सदका अदा हो जाएगा। एक तो इस बहाने हम वज़ू कर लेंगे, अब वज़ू हो गया, वैसे हमने उस टाइम पे नहीं करना था, किसी नमाज का टाइम नहीं है वो, लेकिन हमारा वज़ू भी हो गया और फिर हमने ये 2 नफल भी पढ़ ली। तो अगर आपने सुबह इशराक के नहीं भी पढ़े हुए और आप इतनी देर नहीं जाग सकते, तो फिर आप फजर के बाद अगर जिक्र करके कुरान पढ़ के सो भी गए हैं, तो जब उठेंगे तो फिर ये 2 नफल पढ़ना। इससे हज और उम्रे वाला तो नहीं सवाब मिलेगा, मगर ये सदका हो जाएगा। ठीक है, तो देखें आप, ये बहुत सारी खैर मिल सकती है हमें। ये छोटी छोटी नेकियां मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़े से अपने आप को इसकी तरफ कायल करने की ज़रूरत है कि हम इनके लिए अपने आप को आमादा करें कि नहीं, ये मैंने करनी है, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हो जाएंगी। और यही देखिएगा, जोड़ जोड़ के मैंने आपको वो गल्ले की मिसाल दी थी ना, मनी बॉक्स की, देखिएगा फिर इंशाल्लाह ताला ये छोटी छोटी भी पहाड़ बन जाएंगी क़यामत के दिन। फिर आप खुश होंगे कि शुक्र है मैंने कर ली थी। ठीक है। ताला سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته